अला क्या चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्ताय नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं बुद्धिमान् तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय माम् चरणं। यहाँ पर श्री विष्णु मंदिर में हम लोगों का तृतीय दिवस है और फिजी में आए हुए हमें करीब करीब लगभग 10 दिन हो गए। आज 10वां दिन है। लोग बड़ी उत्कंठा के साथ में सुन रहे हैं, इसलिए मैं सबको विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत से कुछ भगवान के लीलाओं का, मधुर लीलाओं का प्रवचन कर रहे थे, किंतु आज हम पहले हम कुछ विशेष सनातन धर्म के संबंध में बतलाकर तो फिर उनकी विशेष लीलाओं का हम प्रवचन करेंगे। आजकल सारे विश्व में, हमारे भारत में भी, भारत के से बाहर के देशों में भी हमारे सुप्राचीन वैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित श्री सनातन धर्म का विरोध हो रहा है। चारों तरफ से लोग हमारी इस भारतीय संस्कृति, ज्ञानों का भंडार वेद उपनिषद पुराणों पर, सनातन धर्म पर आक्रमण कर रहे हैं। कहते हैं ये तो एक माइथोलॉजी है, स्त्रियों का रसोई घर का एक कहानी मात्र है, इसमें कुछ सार नहीं है। दूसरी बात, अरे भाई ब्रह्मा भगवान का कोई आकार नहीं है, इसलिए मूर्ति पूजा भी ढोंग है। क्या पत्थर की मूर्ति अथवा किसी धातु के से बनी हुई मूर्ति भगवान हो सकती है, और उस पूजा का क्या कोई फल होगा? वेदों में कहीं भगवान का, कृष्ण का कोई नाम नहीं है। रामकृष्ण एक साधारण महापुरुष थे या पुरुष थे, व्यक्ति थे, भगवान नहीं। वेदों में जो बातें लिखी हुई हैं उसका कोई मूल्य आधार नहीं है। इस तरह से तरह तरह के आक्षेप आ रहे हैं। अब तो कुछ कम सुनने में आ रहा है कुछ दिन पहले सर्वत्र ऐसे ही आक्षेप सनातन धर्म के प्रति आ रहे थे, किंतु हमारे प्रौढ़ विद्वानों ने, शास्त्र के वेत्ताओं ने प्रबल युक्ति और प्रमाण के आधार पर उनके विचारों का खंडन विखंडन किया। उन लोगों में से हमारे भक्ति वेदांत स्वामी जी, जिसको आप लोग प्रभुपाद के रूप में जानते हैं, वो भी आज से कुछ दिन पहले आए और सारे विश्व में सनातन धर्म की प्रतिष्ठा की। उन लोगों के इन प्रश्नों का उत्तर दिया जो हमारे शास्त्रों में इसके उत्तर दिए गए हैं, इसलिए आप लोग कभी भी विचलित नहीं होंगे। ये हमारा जो सनातन धर्म है, युक्तियों पर और वैज्ञानिक सत्य तथ्यों पर निर्भर है, इसका एक कोई अक्षर भी झूठा नहीं है, इस चीज को समझेंगे। ऐसा कहने वाले लोग न तो उसका कभी पालन किया, न कोई उसकी अनुभूति की, इसलिए उनकी धारणाएं भूल हैं। बहुत दिन पहले कोई पाश्चात्य देश के स्कॉलर मैक्स मूलर, आप लोग उनका नाम जानते होंगे, कुछ थोड़ी सी संस्कृत वाराणसी में पढ़ी और पढ़ करके भारतवर्ष को संसार में नीचा दिखलाने के लिए उसका गलत अर्थ किया, जो आजकल स्कूल कॉलेजों में, विशेष करके विदेश के कॉलेजों में पढ़ाई जाती है। लोग, विशेष करके पाश्चात्य लोग, भारत के विषय में टेलीविजनों में या प्रचारों में, अखबारों में भारत की केवल गरीबी दिखलाते हैं, भारत के लोग भीख मंगे हैं ये दिखलाते हैं, भारत की सब चीजें बेकार की है, वहां पर लोग नंगे और भूखे केवल डोलते हैं, और गजेड़ी भगेड़ी साधु झूठ मूठ वाले के पंजे में रहते हैं, उनकी बात मानते हैं, इनमें वैज्ञानिक उन्नति नहीं है, अच्छे विचार नहीं, ये इसलिए दिखलाते हैं कि पाश्चात्यों की दृष्टि में भारत कुछ गिर जाए, जिससे कि वो गुलाम रखा जा सके और उसकी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करके हम अपनी संस्कृति मुंझे रख करके अपने जैसा बर्बाद कर दें। भारत की संस्कृति महान है, भारत महान है, इसका पहले भी ये महान था, आज भी उसी तरह से महान है, नहीं तो हम जैसे लोग विश्व में जाते हैं, सर्वत्र वहाँ के देशी विदेशी सभी लोग हम लोगों का आदर करते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, यदि इसमें तथ्य नहीं रहता तो आज सारे विश्व के लोग पुनः भारत की संस्कृति को ग्रहण करने क्यों जा रहे, वो लोग आज समझ रहे हैं धन से ही शांति और सुख नहीं खरीदा जा सकता। रशिया इस चीज को समझा, ये लोग भी जो सबसे समृद्ध देश अमेरिका है, ये भी इसको समझ रहा है, क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, धन से ये चीजें सुख और शांति नहीं मिलता, हमारे संस्कृति में इसको पहले ही देखा जा चुका है, मैंने कल परसों मैंने इसके संबंध में भी पहला आक्षेप करते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, कल हमने कुछ कुछ बतलाया था, यदि भगवान का रूप नहीं है तो बाइबल ने ये क्यों लिख दिया गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, गॉड ने अपने रूप के समान में मनुष्यों को बनाया, ये क्यों लिखा, पहले उसको काटो, उसको मत मानो, गिरजाघरों की बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आकाश में खुले रहो, और तुम्हारी भी मूर्ति आई कहां से, आई कहां से, यदि भगवान का रूप नहीं है तो तुम्हारा रूप आया कहां से, तुम कैसे आए, लाखों जो रूप हुए कभी जीरो से हुआ, जीरो से आजकल कोई मनुष्य के बाद में और कोई और उन्नत योनि क्यों नहीं हो जाती, जो पहले हमने देखा, आज नई नई कोई चीज क्यों नहीं पैदा होती। इसलिए हमारे बीच के सभी चीजें परम सत्य हैं, इससे बढ़कर के कोई सत्य नहीं। इसलिए भगवान का रूप है। हम देखते हैं कि कटहल से ही कटहल पैदा होता है, आम से आम पैदा होता है, इमली से इमली पैदा होती है, गाय से गाय ही पैदा होती है, पुरुषों से मनुष्य ही पैदा होते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए भगवान का यदि रूप नहीं रहता तो ये कहां से इतनी प्रजाएं और इतने लोगों का इतना रूप होता है। इसलिए यह थ्योरी गलत है। आधुनिक प्राय समस्त थ्योरियां गलत हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में भी ऐसा लिखा, सतैव सम्य इदम् अग्रासीत्। ये जगत का सृजन करने वाला है, उसका रूप है परम सुंदर रूप। वो कैसा है? द्विज श्याम सुंदर मुरलीधर, जो समस्त जगत को आकर्षित कर सकता है। उसमें समस्त गुण है, वो समस्त गुणों का आधार है, परम दयालु है। यदि वह रूप ही नहीं धारण कर सकता, दूसरों पर दया नहीं कर सकता, तो भगवान मानने की जरूरत क्या है? उसकी इबादत चर्चों में या उसमें मुसलमानों के मस्जिदों में या ऐसे ही करने की जरूरत क्या है? उसकी प्रार्थना तो सुनेंगे, उसका कान ही नहीं है, उसकी आंख ही नहीं देख सकता। इसे लिखा है हमारे वेदों में, भगवान की मूर्ति है, ओम विष्णु सदा पश्यन्ति सूर्य देवी व चक्षु राज। पश्यन्ति माने देखता, देखना होता है। मुक्त पुरुष लोग ज्ञान की परिपक्व अवस्था में, भक्ति की परिपक्व अवस्था में विष्णु ये जो है इनका रूप दर्शन करते हैं और वही रूप यहां पर प्रकाशित करते हैं। दर्शन किस चीज का होता है? जिसका रूप ही नहीं तो उसको देखेगा क्या? इसलिए वेद में नहीं है ये भगवान की मूर्ति है। और भी भगवान के संबंध में बतलाया गया है हमारे वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में, सर्वत्र ही भरे पड़े हैं। कुरान में, बाइबल में भी ये सब लिखे हैं। बाइबल में, कुरान में भी ऐसा लिखा है, इन्ना अल्लाह खलाका मैन सूरत ही, अपने सूरत के अनुसार में खुदा तल्ला ने ये रूप मनुष्यों को बनाया। इसलिए समस्त लोग ऐसा ही, हमारे प्राचीन संस्कृति ऐसी ही करती है। और हम देखते हैं विचार करके, जिस चीज का रूप नहीं है उससे कोई चीज पैदा नहीं हो सकता, तो भगवान में ये रूप नहीं रहने से पैदा कैसे हो सकता है? ये सब ये संसार को कंट्रोल कौन कर रहा है? सूर्य नियमित समय पर उगता है, समुद्र में ज्वार भाटा समय पर आता है, मैया के स्तन में दूध किसने दिया, बुद्धि का किसने विकास किया, ये बुद्धि कौन दी? कोई है ही नहीं है कंट्रोलर। इसलिए ये सब चीजें हैं। कोई कहते हैं भगवान का, कृष्ण का नाम तो वेदों में नहीं है। अरे मूर्खों, पढ़ा तो नहीं संस्कृत इत्यादि वेद उपनिषद, वेद देखा है नहीं, तो फिर कैसे समझ लिया कि वेदों में कृष्ण का नाम नहीं? हम तो देखते हैं कि वेद में ऐसा कोई वेद ही नहीं है जिसमें कृष्ण का नाम नहीं है। देखिए तो वेदों में कैसा लिखा, स्वस्ति नो गोविंद, गोविंद किसका नाम है? स्वस्ति नो अच्युतानंद, अच्युत कृष्ण का नाम अच्युत। स्वस्ति नो वासुदेव, वासुदेव से जो प्रकट हुए ये वासुदेव, ये वेद में नहीं है, ये ऋग्वेद में बतला रहा हूं। श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन परम तत्व, ये सब तो उसमें लिखा है। सबलात श्यामम प्रपद्ये, श्यामात सबलम प्रपद्ये, श्याम किसका नाम है कौन नहीं जानता? मुरलीधर श्याम सुंदर का नाम क्यों नहीं जानता है? वेद में ये नहीं है। अभी वेद ले आए, हम उनको दिखला देंगे ये वेद में है। इसलिए यहां तक कि कृष्णाय वासुदेवाय तन्नो देवा प्रचोदयात, वासुदेव का स्पष्ट रूप में उल्लेख है। अपस्तक गोप मणि, गोपों में मणि कौन है? गोपों में सबसे श्रेष्ठ ये कृष्ण गोपाल हैं। भूरी सिंगा, जिनकी लंबी लंबी बहुत बहुत स्तन वाली जो गायें हैं, नंद गोकुल में रहती हैं। गोकुल शब्द का उल्लेख है। झूठ मूठ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ऐसी सब बातें करते हैं, कहते हैं कि मूर्ति पूजा भी वेद में नहीं है। अरे वेद में नहीं है, जरा देखो तो इसमें है कि नहीं। अर्चत प्रार्चत प्रिय मेधासो अर्चत, ये वेद का मंत्र मैं बतला रहा हूं। अर्चत माने अर्चन करो, पूजन करो। प्रार्चत विशेष रूप से अर्चन करो। प्रिय मेधासो अर्चत, जिनकी बुद्धि मेधा शक्ति बहुत उन्नत है वो लोग भगवान की पूजा करते हैं, शिव विग्रह की पूजा करते हैं। कैसे नहीं है, इसलिए आप लोग मत समझेंगे ये ढोंग है मूर्ति पूजा। जो लोग भगवान को उपासना प्रणाम नहीं करते उनका जीवन सुखमय कदापि हो ही नहीं सकता है, वो शांति से नहीं रह सकता। वही लोग बीस पान करते हैं, आत्महत्या करते हैं, और वही देश सबसे दुखी है। आज भारत के लोग कुछ पश्चात देशों के लोगों का अनुकरण करने के कारण दुखी हैं, नहीं तो धन चाहते नहीं थे। विदुर इतने धनी होते धन का त्याग कर दिया। हमारे जितने लोग हैं, सुखदेव गोस्वामी जी बड़े धनी पिता के पुत्र थे, वो नंगे रहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं। वैभव को त्याग करते ये वैभव में ही दुख है। हम लोगों ने संसार छोड़ा अपना धन के लिए नहीं, इस दिव्य ज्ञान के लिए, वैदिक ज्ञान के लिए, जिसमें हम लोग सुखी रह सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु अभी कुछ दिन पहले अपने प्रिय सुंदरी भार्या को छोड़ करके भगवत चिंतन करने के लिए चले गए, लोगों को शिक्षा देने के लिए। इसलिए हमारे ऋषियों ने महर्षियों ने ये उपलब्धि की, जहां अधिक अर्थ रहेगा वहां पर अनर्थ होगा ही, वहां पर आत्मचिंतन नहीं होगा। जो उच्च कुल में जन्मे हैं, जो परम सुंदर हैं, जागतिक विद्या जिनको है, जिनको अर्थ है अधिक, वो भगवान का भजन नहीं करते, उनको समय नहीं है। इसलिए मध्यम श्रेणी के लोग खाने पीने की भी कमी नहीं, अधिक पैसा भी नहीं है, ये लोग भगवान की कथा सुनकर के भगवान की तरफ मुड़ते हैं, इसलिए जानबूझ करके छोड़ देते हैं। इसलिए भारतवासी जो संत लोग हैं कभी भी धन के लिए प्रयास नहीं किया, वो तो पूर्व जन्मों के कर्मों से अपने आप आएगा ही, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए वो निश्चिंत होकर के परमार्थ करते हैं, इसीलिए मनुष्य का जन्म हुआ है। इसलिए धन के लिए प्रयत्न ही नहीं किया, जो कुछ था वो बल्कि दे दिया। इसलिए इस चीज को समझें। एक समय में याज्ञवल्क्य ऋषि थे, उनकी दो स्त्रियां थी, एक कात्यायनी और एक मैत्रेयी। जब ये 50 वर्ष से ऊपर चले गए तो उन्होंने अपनी पत्नियों से कहा, प्रियतमे मैंने जो कुछ कमाया वो आप लोगों को दे रहा हूं, लाखों कोटि गायें, दो दो पुत्र तुम लोगों को दे रहा हूं, ये कुटी भी भजन की या अट्टालिका तुम्हें दे रहा हूं, महल मैं तुम्हें दे रहा हूं, हमको दक्षिणा में जो कुछ स्वर्ण मिला था वो सब तुमको दे रहा हूं, अब तुम लोग घर में बच्चों के साथ में रहो और हमें ये आदेश दो कि आप जा करके भजन कीजिए भगवान का। उसमें मैत्रेयी जी ने कहा, ठीक है, आपने कर्तव्य पूरा किया है, आप भजन करने के लिए जा सकते हैं और खूब खुशी के साथ में जा सकते हैं, किंतु दूसरी स्त्री ने उनको कहा, मैं एक केवल प्रश्न पूछना चाहती हूं, प्रश्न का उत्तर देकर के उचित और आप जा सकते हैं। क्या प्रश्न है? प्रश्न ये, आप जो हमें घर द्वार लड़के और संपत्ति जो दे करके जा रहे हैं, क्या इससे मैं सुखी हो सकूंगी?
यदि यही सुख का कारण होता तो आप इनको छोड़कर के क्यों जाने चले जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं, इसका उत्तर दीजिए। आप इससे लेकर के सुखी रहिए, हमको क्यों सुखी बना करके रखना चाहते हैं। बड़े खुश हुए, कहे तुम हमारी सचमुच में धर्म पत्नी है, हमारी अर्धांगिनी है, तुम्हारे जैसे स्त्री को पा करके मैं बहुत खुश हूं, कृतार्थ हो गया। देखिए, आपने हमने तुमको जो अर्थ दिया, इससे कोई भी नहीं सुखी रह सकता जब तक कि आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान न हो और भगवान के प्रति भक्ति न हो, कभी हो ही नहीं सकता। जितना भी धनी आदमी रहेगा वो बुरी तरह से और मरते हैं उसके में आसक्त होकर के। उन्होंने बतलाया, देखो बेटी, देखो प्रिय, आदमी गाय पालता है, बड़ा प्यार करता है, क्यों? क्योंकि दूध देती है, वो दूध को प्यार करता है, गाय को नहीं। गाय यदि दूध न दे तो कौन प्यार करेगा? पति अपने पत्नी को प्यार करता है क्योंकि उसे सेवाएं प्राप्त होता है। यदि पत्नी सेवा न करे, उसके मनोनुकूल में न रहे और सुंदरी न हो तो घर से उसी दिन निकाल दे। स्त्री अपने पति को आदर करती है स्वार्थवश, किस लिए? यदि पति उसके अनुसार न चले और उसकी रक्षा न करे, उसके भोगों के उपकरणों को न दे और जरा पागल सा हो जाए, अर्थ न कमाए, रोगी हो जाए, तो छोड़ देगी। पाश्चात्य देशों में तो रोज का ये धंधा है, जिसने 10 पति नहीं बदले और जिस स्त्री ने 5, 10, 15, 20 स्त्री नहीं बदल दिया, वो तो कोई मनुष्य नहीं। क्या ग्रीन बुक कोई है? हाँ, उसमें रिकॉर्ड में तो उनका नाम ही, जो सबसे अधिक पति और स्त्री को बदले उसका उस नाम उसमें नाम हो जाए, उसके लिए आकुल रहते हैं। भारतीय ये सब संस्कृतियां नहीं है, इस चीज को अच्छी तरह से समझना। तो वो बतलाने लगे, आदमी आयरन चेस्ट में अपने आभूषणों को सोना तो रखता है, किस लिए? आयरन चेस्ट के प्यार के लिए नहीं, चूंकि हमारा ये चीज सुरक्षित रहेगा। बेटे को इसलिए प्यार करता है कि भविष्य में बूढ़ा हो जाने पर हमारी सेवा करेगा, इसलिए परस्पर। आदमी देखते हैं कि आम के बगीचे लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, कांटेदार क्यों नहीं लगाते? क्योंकि उससे सुंदर फल मिलते हैं। ये सब जगत की माया है, इसमें सुख शांति नहीं है। सुख शांति किसमें है? यदि यह उपलब्धि किया कि मैं भगवान का अंश हूं, इनसे मैं सुखी नहीं रह सकता, भगवान का चिंतन करेगा। पूर्व जन्मों के कर्म अनुसार में खाने के लिए सभी चीजें मिली, हम भी तो खाने के लिए तो कुछ नहीं करते हैं, किंतु हमको आप लोगों से कम तो खाना नहीं मिलता, बल्कि और सब लोग 50 आदमी 1000 आदमी कहते हैं कि महाराज जी आप हमारे घर में आज भोजन कर लीजिए, क्या जरूरत है मुझे। इसी तरह से सुखदेव गोस्वामी को क्या जरूरत है, लाखों विश्व उनके चरणों में डोलता है, क्यों? ऐसे ज्ञान से दीप्यमान है। इसलिए भारत के वेद उपनिषद शास्त्र माइथोलॉजी नहीं है, झूठ नहीं है, इसी में यथार्थ सुख और शांति है, इस चीज को अच्छी तरह से समझा जाए। मूर्ति पूजा ढोंग नहीं है, यदि हम भगवान को पुष्प लेकर के इनके चरणों में देते हैं, क्या भगवान अंधा है जो देखेगा नहीं? निराकारवादियों का भगवान अंधा हो सकता है, किंतु हम लोगों का भगवान लाखों आंखें वाला है, लाखों मस्तिष्क वाला है, लाखों हाथ पैर वाला है, गिरिराज जी के लाखों हाथ हैं, वो अपने लाखों हाथों से लोगों को बांट रहे हैं। आज लाखों जनता वहां पर जाती है, किस लिए? उनकी सारी आकांक्षाएं पूर्ण हो जाती हैं सामने। इसलिए पत्थर के टुकड़े गिरिराज जी नहीं है, गंगा जी केवल पानी नहीं है साधारण। एक समय गंगा जी में बाढ़ आई और उसके किनारे एक सांप रहता था,
उसका बिल माने गड्ढा एकदम जल के बराबर हो गया, तो उसमें पानी जाने लगा। सोचा ये पानी भर जाएगा तो हम मर जाएंगे। तो वहाँ से थोड़ा सा निकल रहा था, इतने में गरुड़ जी उतर करके देख रहे थे। गरुड़ जी ने अपने पंजे से उसको पकड़ लिया और पंजे से उड़ने से ही उसकी पूंछ सांप की गंगा नदी में पानी में टच कर गया, छू गया। थोड़ी देर में देखा क्या, वो सांप तो का शरीर तो उसके पंजे में रहा, किंतु उसमें से दिव्य मूर्ति निकल करके चतुर्भुज मूर्ति धारण करके परम दिव्य रूप हुआ और गरुड़ के पीठ पर बैठ गया और गरुड़ को ले जाना पड़ा बैकुंठ में उसको। इसलिए गंगा नदी में, गंगा नदी नहीं है वहां का पानी, पानी नहीं है, अमृत से भी बढ़ करके है। मरने के समय में यदि उसका स्पर्श कहीं हो गया तो एकदम सदगति उसकी हो जाए। इसलिए ये सब बेकार की चीजें नहीं है। पाश्चात्य देशों के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने परीक्षा की गंगा के पानी में क्या चीज है जो बरसों रख दो उसमें कीड़े नहीं पड़ते, और सब जेलों में जितना भी जैसा रखो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। क्यों? तुलसी को हमारे यहाँ महारानी बतलाया जाता है, विष्णु की पत्नी। इसके पत्ते में क्या चीज है जो आज कैंसर में भी इसका प्रयोग हो रहा है, समस्त औषधियों की ये दवा एक है। केवल औषधि नहीं, इसका सेवन करने से चित्त निर्मल हो जाता है, बुराइयां अपने आप दूर हो जाती हैं, और स्पेशल रूप में क्या होता है, भगवान के चरण में भक्ति प्रेम हो जाता है। इसलिए ये तुलसी को भगवत भक्ति कहा गया, देने वाली बतलाई, हमारे चित्त को संशोधन करने वाली। आज विश्व में कहीं कोई कारखाना स्कूल कॉलेज नहीं है जहां पर कि दुष्टों का चित्त निर्मल कर दिया जाए, वहां पर और लोगों का चित्त दुष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए भारत की ये सब चीजें परिपूर्ण रूप से सत्य और विज्ञान के ऊपर में प्रतिष्ठित है। ब्रह्मा भगवान के परम भक्त हैं। ये जो ब्रह्मांड है इसका तो ये स्थूल रूप है, उनके द्वारा सृजन किया गया है, उन्होंने बनाया। एक बार कृष्ण भजनंदन श्याम सुंदर छोटी सी उम्र में गैया चराते चराते चले, हजारों सखा उनके साथ में थे, लाखों गैया थी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हम, उनको लेकर के एक वन से दूसरे वन में चले जा रहे हैं, तरह तरह के बच्चों जैसे खेल खेल रहे हैं। इतने में एक बड़ा भारी अजगर सांप मीलों लंबा और जिसका मुख आकाश तक छू रहा था, एक नीचे एक ऊपर, कृष्ण को निगलने के लिए तैयार था। इसका नाम है अघासुर। अघ माने क्या? पाप। जितने प्रकार के पाप हैं उन सब पापों का करने वाला महादुराचारी, कपटी, धूर्त, लोगों को अकारण ही तंग करना असुरों का कार्य है। कंस का ये मित्र कंस के परामर्श से कृष्ण को मारने के लिए आया। कृष्ण के सखा लोग ग्वाल बाल और उनके जो बछड़े थे आगे आगे चल रहे थे, कृष्ण आज कुछ पीछे हैं। बछड़ों ने देखा और गोपाल बाल को ने देखा कि भाई ये क्या है, ये तो बड़ा भारी पर्वत है, सांप सा इसका मुख है, आज इसके भीतर चल करके देखेंगे इस कंदरे के अंदर में क्या चीज है। लोग आगे बढ़े, उसने कालीन जैसी लाल अपनी जीभ को बाहर कर रखा था, सड़े मुर्दे की गंध उसके पेट से आ रही थी। सभी बच्चों ने कौतूहल बस ये क्या चीज है, क्यूरियोसिटी में आगे बढ़े। थोड़ी देर के बाद में ये उसके मुख में प्रवेश कर गए, बछड़े जितने थे और सखा लोग। वो सोच रहा था जब कृष्ण आए तो कृष्ण के साथ में इनको अपने पेट में ले जाऊं। इतने में कृष्ण ने देखा, अरे ठहरो ठहरो, किंतु कौन सुनता है। वो लोग भीतर चले गए, कृष्ण देखा जैसे ये लोग तो भीतर चले गए थे, ये भी उसका खुला हुआ अभी तक मुख था उसके अंदर में, ये भी प्रवेश की। प्रवेश करते ही अपने जबड़ों को उसने बंद कर दिया। जबड़े के बंद करने के बाद में उसके बीच से जितने ग्वाल बाल और बछड़े थे वो तो सब साथ ही साथ में मर गए, मूर्छित हो गए। और कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण को तो मार नहीं सकता कोई, वो तो स्वयं भगवान है, बीच से भी उनका कुछ नहीं होने का। उन्होंने अपने शरीर को एकदम लाल आग के समान गर्म बना दिया, उसका सारा मुख जलने लगा और उसके नाक के छिद्र में और गले में अटक गए, श्वास बाहर भीतर कहीं नहीं आए, आंखें निकल गई और उसका प्राण निकल गया यहां से फाड़कर। उसकी आत्मा आकाश में घूम रही थी, देखा ब्रह्मा जी देख रहे हैं इस लीला को। जब कृष्ण जहीं उसकी आत्मा निकल गई तो उसके मुख से समस्त बच्चों की तरफ में देखा, अपने दृष्टि के अमृत से सबको उजिला दिया और सबको लेकर के बाहर आए। जो ही बाहर आए तब तक उसके शरीर से जो आत्मा निकली थी वो आकाश में ज्योति के रूप में घूम रही थी। जो ही कृष्ण आए बाहर में तहीं कृष्ण के चरणों के अंदर में प्रवेश कर गए। ब्रह्मा जी ने देखो जी इसका कितना भाग्य, भगवान का विरोध करने पर भी इनके चरणों में मुक्ति को पा लिया, उनके चरणों में मिल गया, जो बड़े बड़े कोटि कोटि लाखों वर्षों तक सिद्ध जो करने पर भी भगवान के चरणों में नहीं मिल पाते, बड़े बड़े योगियों के लिए परम दुर्लभ गति। ऐसा सोच करके उन्होंने कहा कि इस भगवान की मैं कुछ लीला देखना चाहता हूँ। मनी मन में शंका, उन्होंने भगवान की कुछ परीक्षा करनी चाहिए। कैसे परीक्षा करें? उनके दिमाग में एक बात आई, मैं परीक्षा करूं ये नंदका लाला है, लड़का गोप केवल है, या ये लोग कहते हैं कि ये ब्रह्म है, भगवान है, जरा परीक्षा तो कर लूं। जैसे आज के लोग कृष्ण को भगवान नहीं मानते, माना उसका उत्तर समझने के लिए देने के लिए ऐसी वो परिकल्पना करने लगे। उन्होंने कहा कि आज जब ये भोजन करने बैठेगा बच्चों के साथ में, इसके बछड़ों को और सखाओं को सबको हर ले करके पहाड़ की कंदरा में बंद कर दूंगा और देखते हैं कि ये क्या करता है। बात ऐसी हुई कि कुछ दिनों पूर्व, कुछ दिन पहले कृष्ण ने देखा ब्रज की जितनी भी ग्वालिने हैं वो चाहती हैं कि कृष्ण हमारा पुत्र होता और हमारे स्तन कष्टे दूध पाता और हम उनका पालन लालन करते। जितनी भी गैया थी अपने बछड़े से अधिक कृष्ण को मानती थी और वो चाहती थी कृष्ण हमारा बछड़ा हो जाता, हमारा दूध पान करता। ब्रज की जितनी लड़कियां थीं वो सोचती थीं यदि कोई पति मिले, यदि हमारा विवाह हो तो कृष्ण से ही विवाह हो, ऐसा ही हमको पति मिले। तरह तरह की लोगों की भावना कृष्ण के प्रति, उन्होंने एक साथ सबकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए क्या किया? ब्रह्मा को आकर्षण करके योग माया के प्रभाव से उनके बुद्धि में ये दिया कि बच्चों को चुरा लो और सखाओं को चुरा लो। ये ब्रह्मा की अपने मन की उपज नहीं थी, बल्कि योग माया के द्वारा भगवान ने उनके अंदर में ये बात प्रवेश करा दी। ब्रह्मा ने सोचा कि मैं खुद ही समझ रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है भगवान जब कृपा करते हैं तो हमारी बुद्धि में ऐसी प्रेरणा देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तं येन माम उपयन्ति ते, गीता में भी लिखा है उपनिषद में, जब पर जाए मैं कृपा करता हूँ तो उसकी बुद्धि में अच्छी प्रेरणा देता हूँ, अच्छे कामों को कर सकता है। यदि अच्छी प्रेरणा मिले कोई, समझना ये भगवान की प्रेरणा है, और बुरा कोई मतलब तो सोचना कि हमारे मस्तिष्क की ये बात है। कभी कभी हम कोई बुरा काम करते हैं तो भगवान प्रेरणा देते हैं इसे मत करो, जो लोग उसको नहीं मानते हैं वो विपत्ति में पड़ते हैं, उनको दुख भोगना पड़ता है। ये भक्ति भी भगवान की बिना कृपा से नहीं होगी, संतों का मिलना भी भगवान की कृपा से नहीं होगा। बिनु संत भगवानों की कृपा से, संतों की कृपा से भगवान नहीं मिलते, या भगवान की कृपा से संत नहीं मिलते। इस तरह से सब लिखा है। इसलिए इस प्रेरणा को ब्रह्म भगवान ने उनके अंदर में दी और अपनी लीला को भी दिखलाना चाहा। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, जो ब्रह्मा के हृदय में ऐसी प्रेरणा दी। ब्रह्मा जी ने चट देखा जी ये कृष्ण गोपालकों के साथ में खेलते हुए खा रहा है, बीच में बैठा है, वन राउंड सब सखा उनको घेर करके बैठे, दो तीन चार पाँच सात उनके अंदर में आगे पीछे साइड में सब गोपालक बैठे, लाखों बालक जो बहुत दूर पीछे थे वो भी देख रहे हैं कृष्ण के सामने, जो साइड में है वो भी देख रहे हैं कृष्ण के पास आमने सामने। सभी ने ऐसा अनुभव किया ये कृष्ण से मैं बातचीत कर रहा हूँ, उनको खिला रहा हूँ, वो हमको खिला रहे हैं। ये भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्ति है, जो नहीं होने का उसको भी कर, ऐसा संभव मनुष्य के लिए नहीं हो सकता। गिरिराज को उठा लेना किसी साधारण मनुष्य की बात नहीं है, बीस पान करके भी जीवित रहना ये मनुष्य की बात नहीं है, आग जल रहे उसको खा लेना ये साधारण मनुष्य की बात नहीं है। कृष्ण ये सब चीजें की है, एक ही साथ में हजारों रूप धारण कर लिए हैं, ये सब चीजें दिखलाई। इसलिए यहाँ पर जब वो खा रहे थे तो इतने में बछड़े चढ़ते चढ़ते चढ़े कुछ दूर चले गए, तो इन्होंने बछड़ों को पकड़ करके एक कंदरे में पहाड़ की गुफा में बंद कर दिया। कृष्ण कहा जी बछड़े किधर गए, ग्वाल बाल बोल जी बछड़े किधर गए। कृष्ण ने कहा जी तुम लोग बैठ करके खाओ, मैं अभी तुरंत खोज करके लेता हूँ। कृष्ण बंसी लेते हुए एक हाथ में कवल, हाथ में दधि और अन्न का ग्रास लेकर के, और बंसी को कहाँ जठक पकड़ इधर में लगा दिया, ऊपर में मोर मुकुट है, बड़े चिंतित होकर के बच्चों के लिए मुख सूख रहा है कृष्ण का मानो, और बच्चों को खोजने के लिए चल दिए। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कृष्ण तो इधर गया, बस सखाओं को भी लेकर के दूसरे कंदरा में लेकर के बंद कर। कृष्ण मुग्ध बालक की भांति साधारण की भांति इधर उधर खोज रहे हैं। कृष्ण ने हठात चिंतन किया, अरे ये तो ब्रह्मा का काम है, ठीक मैंने तो ऐसा ही कहा था। बस साथ ही साथ समझ गए, और जितने बछड़े थे जितना जिनका जैसा रंग था वैसा ही एकदम बछड़े बनकर के उनका रंग, उनकी बोली, उनका स्वभाव सब कुछ वैसा ही कर दिया। जितने सखा थे गोपाल बालक उनको भी उनका भी रूप धारण कर लिया, उनकी लठिया बन गए, उनकी कंबली बन गए, उनकी बंसी बन गए, उनके बेणू बन गए, सब कुछ जिस स्वर से वो बातचीत करते थे, माता के पास में जाते थे, ठीक उसी प्रकार से दैनंदिन का कार्य उसी प्रकार से कृष्ण एक वर्ष तक करते रहे। इधर मैं ब्रह्मा जी ऐसा दोनों को बंद करके आकाश मार्ग से अपने ब्रह्मलोक में गए, वहाँ पर प्रहरियों ने उनको जाना बंद करे, आप कौन हैं, किस लिए यहाँ हैं। अरे मैं चतुर्मुख ब्रह्मा जी हूँ, आप चतुर्मुख ब्रह्मा तो हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो तो काम कार यहाँ का सब काम कर रहे हैं। उन्होंने देखा तो भाई ये दूसरा कौन आ गया। कृष्ण ही स्वयं वहां पर पधार करके और द्वारपालों से कहा उसको यहां से निकाल दो, यहां आने मत देना। द्वारपाल ने कहा जैसे ये तो कोई ठग आदमी है, रूप बना करके आए, तुम यहां से चले जाओ, खैर जाओ। उन्होंने कहा भाई ये तो भगवान ही शायद वहां पर हमारे स्थल पर बैठ करके और हमको शिक्षा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बस वहीं से लौटे। लौटे इतने में एक वर्ष पूरा हो गया। इतने में क्या होता है, जब कृष्ण अपने सखाओं को घर लेकर के जाते हैं, पहले उनकी माताएं अपने बेटों से कृष्ण को अधिक प्यार करती थी, किंतु अब तो कृष्ण जो हैं और उनके सखा दोनों ही कृष्ण बने हुए हैं, अब मैया ऐसा नहीं पहले जैसा नहीं करती, अब दोनों को बराबर प्रेम करने लगी। पहले गोचारण करके कृष्ण लौटने के समय कृष्ण को ही अपनी गोदी में ले लेती थी, आजकल वैसा नहीं, अपने बच्चों को ही गोद में लेती है। और गायें पहले अपने बछड़े से भी कृष्ण को अधिक प्यार करती थी, किंतु आजकल उल्टा उनका हो गया, अपने नए बछड़ों को जो कृष्ण ही बने हैं उनको अधिक प्यार करने लगी जो पुराने बछड़े थे, और नए बछड़ों को प्यार नहीं करते क्योंकि नए पुराने बछड़े तो चल रहे थे, ब्रह्मा जी हर ले गए थे, कृष्ण बछड़े बन गए हैं, इसलिए पुराने बछड़े को अब वे अधिक प्यार करते हैं। और एक बात हुई, उसी समय गर्गाचार्य ने घोषणा की ये वर्ष बहुत ही शुभ है, इसलिए गोपाल को गोपों को चाहिए कि अपनी कन्याओं की शादी इस वर्ष जरूर कर दें। जो यहाँ तक कि पेट में भी जो हैं वो परस्पर मिल करके ये करें कि यदि ये लड़की हुई और उसका लड़का हुआ तो हम भी आज ही उनकी शादी कर रहे हैं, ऐसा भी कर दो। तो उसी वर्ष में सारी गोप कन्याओं की शादी हुई, तो किससे शादी हुई? वो जितने सखा थे वो कौन थे? कृष्ण बने हुए हैं, इसलिए सबकी शादी कृष्ण से ही हो गई, इसलिए सब कृष्ण की ही पत्नी है, क्योंकि उन्हीं की शक्ति है। लोग इस चीज को नहीं समझ सके, लीला है किस प्रकार से कर रहे हैं। और क्या हुआ, एक बात, बलदेव जी एक दिन कृष्ण के साथ में मधुबन में गैया चरा रहे थे, अंतिम दिन। उस समय गोवर्धन में बड़ी बड़ी गायें चर रही थी और बछड़े चर रहे थे मधुबन में, वृंदावन के पास मधुबन, और वहां से थोड़ी दूर पर गिरिराज गोवर्धन, गिरिराज के ऊपर में बड़े बूढ़े वहां पर गायों को चरा रहे थे बड़ी बड़ी, और बछड़े कहाँ चर रहे हैं मधुबन, इनको कृष्ण और गोप सखा छोटे छोटे बच्चे चरा रहे। गायों ने दूर से ऊपर से अपने बछड़ों को देखा, पुराने को, नए बछड़ों को छोड़ दिया, अब बड़ी तेजी से दौड़ती हुई अपने पुराने बछड़ों को प्यार करने के लिए और दूध देने के लिए दौड़ी। जितने बूढ़े बूढ़े या प्रौढ़ गोप थे लड़कियों से उन्हें रोकने की चेष्टा की, लड़कियां चलाई, गायों को मारा भी, किंतु कोई भी गाय नहीं रुकी, सभी जंगलों से होकर के नाले नदियों को फांती हुई, कांटों को भी पार करती हुई, किसी प्रकार सीधे एकदम अपने बछड़ों को पेश में जाकर पुराने बछड़ों को दूध देना आरम्भ कर दिया, उनको चाटना, बड़े प्यार से चाटना आरम्भ किया। नए बछड़े वहां पर भी रो रहे हैं, डकार रहे हैं, कहाँ गोवर्धन में, उनको नहीं दिया, चले आई हैं। ये लोग जो गोप थे ये बड़े बिगड़े, ये बच्चे बड़े नटखट, जोर से बेणू बजाया, बंसी बजाई और सिंगा बजाया, इसलिए गायें भड़क करके वहां पर दौड़ करके चली गई, अभी चल करके उनको हम दो चार थप्पड़ लगाएंगे, इसलिए बड़े बिगड़े हुए और गायों के पीछे दौड़ते हुए और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि गायों को लौटा नहीं सके, इसलिए बच्चों पर बड़े क्रोध से आए। और जब यहाँ पर आए तो अपने बच्चों को देख करके इतना स्नेह उमड़ा कि क्रोध कहाँ भूल गए और उनको बड़े प्रेम के साथ में सहलाने लगे। बलदेव जी ने कहा, जी ये बात क्यों, ये पुराने बछड़ों को दूध दे रही है, नए बछड़ों को छोड़ दिया, और ये गोप लोग और ये गोपियां ना अपने पुराने बच्चों को स्नेह कर रही हैं और नए बच्चों को उतना स्नेह नहीं करती, क्यों? उन्होंने विचार किया, देखा, अरे ये और कोई नहीं कृष्ण। कृष्ण की तरफ में हंस करके बोले, अरे भैया कृष्ण कहना, एक यशोदा मैया के दूध पीने से तेरा पेट नहीं भर रहा? तो लाखों घरों में तू चोरी करता है, उसे भी पेट नहीं भरा, अब लाखों गोपियों के तू बेटा होकर के उनका दूध पीता है और तभी तेरा पेट नहीं भरा, लाखों गोइयों के बछड़े होकर के तू दूध पी रहा है तभी तेरा पेट नहीं भर रहा। कृष्ण सुन करके थोड़े से मुस्कुरा दिया, हो देवताओं की माया हमें मोहित नहीं कर सकती, बलदेव जी सोच रहे हैं, किसी भूत पिशाच की, देवता की माया की वृत्ति हमें नहीं भुला सकती, ये तो कृष्ण की योग माया है जो हमको भी भुला रखा था एक बरस तक। अब वो समझे, बलदेव जी भी नहीं समझे, कृष्ण के ही ये कृष्ण ही हैं, ये कृष्ण से अभिन्न है, सब कुछ जानने वाले हैं, किंतु ये भी उनकी लीला को नहीं समझ सकते, तो हम छोटी सी मस्तिष्क वाले क्या समझेंगे, ब्रह्मा जी चार मस्तिष्क वाले वो भी नहीं समझ सके, और हम समझते हैं कि कृष्ण को समझने की भगवान है कि नहीं, इतना सस्ता नहीं, इसलिए हमारे शास्त्रों की बात माननी चाहिए। क्यों मानना चाहिए, इसका एक उदाहरण देता। एक समय हम गुरु जी के साथ में ट्रेन से कहीं जा रहे, उसमें ٹکٹ انسپیکٹر آیا اور وہ ٹکٹ چیک کر رہا تھا. وہ کچھ ناستک ٹائپ کا تھا. گرو جی کو بولا, ارے بھگوان کہیں دکھتے بھی ہیں جو ان کو مانتے ہو؟ بھگوان کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ کرشن بھگوان تھا, اس کو ماننے کی ضرورت کیا؟ کرشن بھگوان تھا, بھگوان کو تو کسی نے دیکھا نہیں, بھگوان کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ تو گرو جی نے بہت سیدھے سے مسکراتے ہوئے اتر دیا, بھیا تم جس چیز کو نہیں دیکھتے ہو اس کو بھی تو تم مان لیتے ہو. تو کبھی نہیں مانتا, جس چیز اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا اس کو میں نہیں مانتا. بھائی جھوٹ مت بولو, جھوٹ مت. تو میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ ہاں جھوٹ کر رہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پتا جی کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جانکی شرما. تم کیسے یہ سدھ کرتے؟ تو پرمانک کرو, تم نے دیکھا جیسے یہ تمہارے پتا ہیں؟ کیسے تم کہہ رہے ہو؟ تم نے میا اور پتا کا ملن دیکھا تھا, اس سے تم گرب دھارن تمہاری میا نے کی اور تم پرگٹ ہوا یہ دیکھا؟ تو نہیں. تو تب کیوں ان کو پتا اور ان کو ماں کیوں کہتا ہے؟ تیری یدی ماں نے اور پتا نے جھوٹ بول دیا, یدی کسی سے کسی دوسرے سے تم پیدا ہو گیا ہو اور ماں لجا کے مارے کہتی ہے یہ نہیں تم اپنے پتا سے پیدا, تو تم پرمان کرو تم نے دیکھا. تو نہیں تو کیوں مانتا ہے؟ انت میں اس کی بولی بند ہو گئی, بغل جھانکتا ہوا وہاں سے نکل گیا. اس لیے وید شاستر ہماری ماتائیں ہیں, ہمارے پورو وجیوں نے اس کی انبھوتی کی, ہمارے منگل کے لیے انہوں نے شاستروں میں لکھ دیا ہے. یعنی ہم نیوٹن کی تھیوری کو پستکوں سے دیکھ دیکھ کر کے, وگیان کی پستکوں سے, گنت کی پستکوں سے ہم پڑھ سیکھ سکتے ہیں, تو کیا ہم اپنے ویدوں شاستروں سے نہیں پڑھ سکتے؟ یعنی کوئی ایک ادنڈ چھاتر یہ کہے اپنے شکشک سے, وہ اس کو ABCD پڑھا رہا تھا, ک خ گ گھ پڑھا رہا تھا, آ ئی پڑھا رہا تھا,